नमस्कार, आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। ये पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक खास उद्बोधन पर आधारित है, ब्रह्म तेजस के अभिवर्धन हेतु गायत्री उपासना।
जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये।
हाँ, तो ये चर्चा उनके एक व्याख्यान से ली गई है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि ये गायत्री उपासना, जिसे हम कई बार सिर्फ मंत्र जपना समझ लेते हैं, उसका और हमारे अपने चरित्र का और एक चीज जिसे गुरुदेव ने ब्रह्म तेजस कहा है, उस आंतरिक शक्ति का आपस में क्या गहरा नाता है।
बिल्कुल, जैसा पूज्य गुरुदेव ने समझाया है उस नजरिए से।
हाँ, तो चलिए शुरुआत उसी महामंत्र से करते हैं जिसकी शक्ति की बात हो रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ध्यो यो न प्रचोदयात्। अच्छा, पूज्य गुरुदेव ने ना सत्यवान सावित्री की जो हम सब कहानी सुनते हैं उसका बड़ा सुंदर रूपक इस्तेमाल किया है।
हाँ हाँ, बहुत अद्भुत तरीके से जोड़ा है उन्होंने।
वो कैसे जोड़ते हैं इसे गायत्री उपासना से, मतलब सावित्री किसे खोज रही है वहाँ?
देखिए, गुरुदेव के हिसाब से सावित्री स्वयं माँ गायत्री की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। और वो किसे खोज रही हैं?
सत्यवान को।
सत्यवान यानी?
यानी वो इंसान जो सत्य पर टिका हुआ है,
जिसका जीवन ही सत्य का व्रत हो। और यहीं पर देखिए, ब्राह्मण शब्द का जो असली मतलब है वो सामने आता है।
हाँ, ये बहुत भ्रम रहता है इस शब्द को लेकर।
बिल्कुल, गुरुदेव ने बार बार जोर दिया कि भाई, ब्राह्मण कोई जन्म या जाति से नहीं होता। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जाने, समझे, परम सत्य को, और उसके हिसाब से अपने कर्म करे, अपने कर्तव्य निभाए।
अच्छा,
तो माँ गायत्री की शक्ति, उनकी कृपा, वो ऐसे ही सत्यवान चरित्र वाले इंसान को मिलती है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, कोई भी।
मतलब सबके लिए।
हाँ, वो तो विश्व माता है, उनकी करुणा तो सबके लिए बराबर है।
ये बात बहुत साफ हुई कि पात्रता जो है वो जन्म से नहीं, कर्म और चरित्र से आती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई इस रास्ते पर चलना चाहे, माँ गायत्री की उस शक्ति को जो बहुत प्रचंड मानी जाती है, उसे धारण करना चाहे, तो क्या चाहिए उसके लिए? वो क्षमता कहाँ से आएगी?
हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है, गुरुदेव के शब्दों में कहें तो वो है ब्रह्म तेजस।
ब्रह्म तेजस, ये क्या है? कोई खास तरह का ज्ञान?
ज्ञान तो है, पर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। ये वो अंदर की आध्यात्मिक चमक है, वो ओज है, वो तेजस्विता है जो इंसान के अपने चरित्र, उसकी तपस्या, उसकी साधना से पैदा होती है।
अच्छा, मतलब ये कमाई जाती है।
बिल्कुल, यही वो कवच है, या कह लीजिए वो बर्तन है, जिसमें गायत्री जैसी इतनी ऊंची शक्ति को संभाला जा सकता है और सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है। गुरुदेव याद दिलाते हैं हमें उन पुराने ऋषियों की।
हाँ।
या फिर तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के उन आचार्यों की। वो सिर्फ ज्ञानी नहीं थे, वो ब्रह्म तेजस से भरे हुए थे,
जैसे चाणक्य या गुरु वशिष्ठ।
हाँ बिल्कुल, चाणक्य हो या वशिष्ठ, उन्होंने सिर्फ शास्त्र नहीं पढ़ाए, उन्होंने अपने ब्रह्म तेजस के बल पर बड़े बड़े सम्राटों को रास्ता दिखाया, समाज को दिशा दी, जरूरत पड़ने पर उन्हें कंट्रोल भी किया। ये शक्ति सिर्फ पोथी पढ़ने से नहीं आती, जीवन की पवित्रता से, शुचिता से आती है।
यहीं पर शायद वो सवाल जुड़ता है जो बहुत लोग सोचते हैं, अक्सर सुनते हैं ना, कि लोग सालों साल मंत्र जपते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, पर उन्हें वो अनुभव नहीं होता या वो नतीजा नहीं मिलता जिसकी वो उम्मीद करते हैं।
हाँ, ये दुविधा बहुतों को होती है।
तो क्या पूज्य गुरुदेव इस बारे में कुछ बताते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है?
हाँ, और उनका जवाब बहुत ही सीधा और कहूं तो प्रैक्टिकल है। इस व्याख्यान में उनका सारा जोर इसी बात पर था कि भाई, चरित्र जो है, हमारा आचरण, वही वो जमीन है जिस पर आध्यात्म का बीज उगता है।
चरित्र ही जमीन है।
तो आप कितना भी अच्छा बीज डाल दो, वो पनपेगा क्या? नहीं पनपेगा।
सही बात है।
गुरुदेव एक बड़ा, मतलब दिल को छूने वाला उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम झूठ बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, या फिर कुधान्य।
कुधान्य मतलब?
मतलब गलत तरीके से कमाया हुआ अन्न या अभक्ष्य चीजें खाना। इन सब से हमारी जीभ जो है वो मानो जल जाती, असंवेदनशील हो जाती।
अच्छा।
अब ऐसी जली हुई बेजान जीभ से आप मंत्र बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो उसका असर क्या होगा, वो निष्प्रभावी हो जाती है। तो सारा किया कराया व्यर्थ
एक तरह से। हाँ,
इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री उपासना को अगर सफल बनाना है तो बाहर के पूजा पाठ जितने जरूरी हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अंदर के आचरण को सुधारना।
कैसे, किन गुणों पर ध्यान देना चाहिए?
जीवन में संयम लाना, ईमानदारी रखना, अच्छा व्यवहार करना, दूसरों की सेवा करना, भला करना, इन गुणों को अपनाना होगा। असल में यही तो ब्राह्मणत्व है, अपने कर्म से, अपने चरित्र से ऊंचा उठना, श्रेष्ठ बनना।
चरित्र शुद्धि, ब्रह्म तेजस, जागरण, इसके साथ साथ पूज्य गुरुदेव यज्ञ को भी बड़ा महत्व देते थे, है ना?
जी हाँ, बहुत ज्यादा।
तो क्या यज्ञ सिर्फ एक मतलब धार्मिक रीति रिवाज है या इसका कुछ और गहरा मतलब भी है?
पूज्य गुरुदेव की दृष्टि में यज्ञ सिर्फ हवन कुंड में आहुति डालना भर नहीं था, वो इसे शक्तियों को बुलाने का, आवाहन करने का और सबसे बड़ी बात वातावरण को शुद्ध करने का एक बहुत शक्तिशाली वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका मानते थे।
वैज्ञानिक तरीका?
हाँ, वो पुराने उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान राम ने लंका जीतने के बाद यज्ञ किया, या पांडवों ने महाभारत युद्ध की जो भयानक नकारात्मकता फैली थी उसे शांत करने के लिए अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञ किए।
हाँ, सुना है।
तो इनका मकसद सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि युद्धों से जो सूक्ष्म नेगेटिव एनर्जी फैलती है, जो पर्यावरण में प्रदूषण होता है, उसको शांत करना था। आकाश तक को, अंतरिक्ष तक को शुद्ध करना था।
अच्छा, इतना गहरा प्रभाव?
जी, गुरुदेव के अनुसार यज्ञ से न सिर्फ शरीर और मन का स्वास्थ्य सुधरता है, बीमारियां दूर होती हैं, बल्कि उससे भी जरूरी बात, हमारे आसपास का जो सूक्ष्म वातावरण है ना, जो आज के जमाने में न जाने कितने कारणों से गंदा हो चुका है, पल्यूटेड हो चुका है, यज्ञ उसकी सफाई करता है, शुद्धि करता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के लिए, पूरी दुनिया के कल्याण के लिए किया जाने वाला एक महान आध्यात्मिक ब्रह्म भोज है, ऐसा वो कहते थे।
तो ये सारी बातचीत से जो एक सार निकल कर आ रहा है वो ये है कि अगर माँ गायत्री की उपासना का पूरा लाभ चाहिए तो सिर्फ मंत्र दोहराना या कुछ बाहर की क्रियाएं कर लेना वो शायद काफी नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
हमें अपने अंदर वो पात्रता, वो ब्रह्म तेजस जगाना होगा, और उस तेजस्विता की जो नींव है वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने चरित्र में है, हमारे व्यवहार में है, हमारे संयम में, हमारे सेवा की भावना में है।
एकदम सही।
हमें, जैसा गुरुदेव ने इशारा किया, सत्यवान बनना होगा, तभी वो सावित्री रूपी माँ गायत्री की शक्ति, उनका आशीर्वाद सही मायनों में हमें मिल पाएगा।
निश्चित रूप से। पूज्य गुरुदेव ने तो इसे जीवन का सबसे समझदारी भरा और फायदेमंद व्यापार कहा है, अध्यात्म का व्यापार जिसमें कभी नुकसान नहीं होता, अगर सही ढंग से किया जाए तो सिर्फ फायदा ही फायदा है। और शायद अंत में यही सवाल हमारे सामने रह जाता है सोचने के लिए कि आज की इस भागदौड़ वाली इतनी उलझी हुई जिंदगी में हम अपने इस चरित्र रूपी जमीन को, उस आध्यात्मिक फसल के लिए, उस ब्रह्म तेजस को धारण करने लायक कैसे तैयार करें।
हाँ, ये विचारणीय प्रश्न है।
कैसे उसे इतना उपजाऊ बनाएं कि दिव्यता का बीज उसमें सचमुच अंकुरित हो सके।
ओम शांति ही।